ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं मुकेश कुमार मिश्र। आरंभ में मुख्य समाचार शीर्षक। 13वीं दक्षिण एशियाई खेलकूद प्रतियोगिता औपचारिक रूप में आज हुई शुरू। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने दशरथ रंगशाला काठमांडू में भव्य समारोह के बीच किया उद्घाटन। उप निर्वाचन अंतर्गत कल हुए मतदान के अधिकांश स्थानों के मत परिणाम हुए सार्वजनिक। प्रतिनिधि सभा सदस्य कास्की क्षेत्र नंबर 2 से नेकपा की विद्या भट्टाराई हुई निर्वाचित। कास्की के मौजा बिसौना में मिट्टी के धंसने में दबने से 5 लोगों की हुई मौत और अमेरिका के न्यू ऑरलियंस में फ्रेंच क्वार्टर टूरिस्ट हब में हुई गोलीबारी में 11 लोग हुए घायल। अब समाचार विस्तार से। 13वीं दक्षिण एशियाई खेलकूद प्रतियोगिता साग आज से औपचारिक रूप में शुरू हुई है। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने आज दशरथ रंगशाला में आयोजित भव्य समारोह के बीच औपचारिक रूप में साग का उद्घाटन किया। मौके पर उप प्रधानमंत्री ईश्वर पोखरेल ने साग को सार्क देशों की एकता और मित्रता बताते हुए कहा कि इसलिए इसे सफल बनाने के लिए सरकार ने पूर्वाधार निर्माण पर विशेष ध्यान दिया है। समारोह में कलाकारों ने नेपाल के साथ साथ सार्क के सदस्य देशों की भी संस्कृति को झलकाते हुए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये। काठमांडू, पोखरा और जनकपुर में आज से 24 दिनों तक चलने वाली साग प्रतियोगिता के लिए करीब 18,000 सुरक्षाकर्मियों और 500 स्वयंसेवकों को परिचालित किया गया है। प्रतियोगिता में 317 स्वर्ण और रजत पदक और 481 कांस्य पदकों के लिए एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, तेक्वांदो, कराते, फुटबॉल, वॉलीबॉल, वारोत्तोलन लगायत 36 विधाओं में प्रतिस्पर्धाएं होंगी। सन 1984 से शुरू हुए साग की 13वीं श्रृंखला तक में नेपाल 2 प्रतियोगिताएं सफलतापूर्वक सम्पन्न करवा चुका है। प्रतिनिधि सभा सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य और स्थानीय तहों के उपनिर्वाचन अंतर्गत कल हुए मतदान के पिछले मत परिणाम के अनुसार 52 में से 44 स्थानों के नतीजे आ चुके हैं। अब तक निर्वाचित 44 सीटों में से नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा 25, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस 12 और समाजवादी पार्टी नेपाल 4 स्थानों में विजयी हुई है। वहीं राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की है। उप निर्वाचन अंतर्गत कास्की निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 में कल हुए मतदान के ताजा मत परिणाम अनुसार प्रतिनिधि सभा के सदस्य पद पर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा की विद्या भट्टराई विजयी हुई हैं। भट्टराई ने अपने प्रतिद्वंदी नेपाली कांग्रेस के खेमराज पौडेल को 8,403 मतों से पराजित किया है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार बताया गया है। प्रधानमंत्री ओली के इलाज में शामिल चिकित्सकों एवं मनमोहन कार्डियोथेरेसिक्स वास्कुलर एंड ट्रांसप्लांट सेंटर के कार्यकारी निदेशक प्राध्यापक डॉ उत्तम कृष्ण श्रेष्ठ ने कहा कि प्रधानमंत्री के एपेंडिसाइटिस ऑपरेशन का घाव ठीक होने में कुछ समय लगेगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उनका घाव अगर जल्द रिकवर हो जाता है तो इसी हफ्ते प्रधानमंत्री को डिस्चार्ज किया जा सकता है। हर साल मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि के दिन आयोजित होता आ रहा श्री सीताराम विवाह पंचमी महामहोत्सव धनुषा की जनकपुर में आज भव्य रूप से मनाया जा रहा है। त्रेता युग में मिथिला के राजा राजर्षि जनक की प्रतिज्ञा अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्रीराम ने पूरी की थी। प्रतिज्ञा पूरी होने के बाद आज की ही पावन तिथि में श्रीराम के साथ राम जानकी का विवाह सम्पन्न हुआ था। इसी के स्मरण में हर साल जनकपुर धाम में धूमधाम के साथ विवाह पंचमी महोत्सव मनाया जाता है। इसी संदर्भ में अतिरिक्त जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजय झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अजय जी, कैसी है रौनक जनकपुर की?
जी
कैसी रौनक है वहाँ की विवाह पंचमी की?
रौनक की बात जहाँ तक है तो आज संपूर्ण जनकपुर विवाह पंचमी में हो गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री भगवान राम और माता सीता के बीच में जो त्रेता युग में विवाह हुआ था उसी के स्मरण में प्रत्येक वर्ष आज मार्ग शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि का दिन विवाह उत्सव जनकपुर धाम में मनाया जा रहा है। इसका खास करके महा उत्सव के रूप में मनाया जाता है। 7 दिवसीय कार्यक्रम होता है। इस अंतर्गत आज सबसे बड़ा महोत्सव के सबसे बड़ा जो आज दिन है वो राम जानकी का विवाह उत्सव है और अभी जानकी मंदिर के प्रांगण में विवाह उत्सव का कार्यक्रम चल रहा है। लगभग इस उत्सव को देखने के लिए जानकी मंदिर परिसर में जिसके यात्री आए हुए हैं नेपाल भारत के विभिन्न जगह से खचाखच भरा हुआ है। इतना ही नहीं अभी 12 बीघा रंगभूमि मैदान में भी विवाह उत्सव का कार्यक्रम, विभिन्न मठ मंदिर में भी विवाह उत्सव का कार्यक्रम चल रहा है और सभी जगह मानव देख पड़ती है। तो हमें लग रहा है जो अब इस बार जो त्रेता युग का जो प्रतीक के रूप में जनकपुर धाम में वास्तव में देखा जा रहा है कि वैसा ही प्रारूप सब भव्य रूप में विवाह उत्सव चल रहा है।
जी, जानकारी करा जी। और इस बार जो विशेष बारात आई है अयोध्या से, भारत के अयोध्या से, वो किस तरह का माहौल है? कल राष्ट्रपति भी वहां पे गई थी सम्मान कार्यक्रम के लिए, कैसा था?
इस बार खास करके जो भारत के अयोध्या जो राम जन्मभूमि है वहां पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वहां पर राम का मंदिर निर्माण हो उसको फैसला किया गया है
जी।
इसके बाद पहली बार उत्सव के रूप में वो लोग सहभागी होने के लिए अयोध्या के साधु संत विशिष्ट महानुभाव सब
जनकपुर धाम
आए हुए हैं
जी।
और वो 500 के संख्या में आए हुए हैं और उनकी उल्लास अत्यधिक है। उतना ही नहीं, जो तीर्थयात्री भारत से आए हुए हैं उन लोगों में भी उल्लास उतना ही है। खास करके राम जन्मभूमि में राम मंदिर बनेगा, इसलिए संपूर्ण हिंदू सब उत्साहित होने के कारण इस बार लगभग 7 लाख की संख्या में तीर्थयात्री आज जनकपुर आए हुए हैं
जी। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी।
बहुत धन्यवाद।
और ये थे हमारे संवाददाता जनकपुर से अजय झा जी, विवाह पंचमी के बारे में विशेष जानकारी देते हुए। और अब बाकी समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने द्वंदकालीन घटनाओं में शामिल हुए लोगों को आम माफी देने के हिसाब से कानून न बनाए जाने की बात कही। नेकपा के केंद्रीय कार्यालय धूम्रवाराही में आयोजित कार्यक्रम में अध्यक्ष प्रचंड ने कहा कि द्वंदकाल में हत्या बलात्कार जैसे क्रूर अपराधों में शामिल होने वाले लोगों को उन्मुक्ति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि द्वंदकाल में जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों पर कार्रवाई करने और पीड़ितों का सहारा बनने के लिए ही सत्यनिरूपण तथा मेल मिलाप आयोग और लापता लोगों की छानबीन आयोग का गठन किया गया है। कस्की पोखरा महानगरपालिका 20 स्थित मौजा विसौना में मिट्टी के धंसने में दबकर 5 लोगों की मौत हो गई। आज सुबह भलाम मौजा ग्रामीण सड़क खोदने के दौरान मिट्टी के धंसने में दबकर 5 कामगारों की मौके पर ही मौत हो गई। ये जानकारी कास्की पुलिस ने दी। मरने वालों में सल्यान की बागचोर नगरपालिका 4, पेदीखोला के तूबान बसनेत, जीत बहादुर बसनेत, खिमलाल ओली और गणेश ओली शामिल हैं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय मार्कशीर्ष 27 को नौवां दीक्षांत समारोह का आयोजन करने जा रहा है। समारोह में स्नातक और स्नातकोत्तर तहों के विभिन्न विधाओं में सर्वोत्कृष्ट स्थान लाने वाले विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए जाने की जानकारी विश्वविद्यालय ने दी। समारोह में आम संचार तथा पत्रकारिता विषय में स्नातकोत्तर तह में सर्वोत्कृष्ट अंक प्राप्त रेडियो नेपाल के नायब कार्यकारी निदेशक बुद्धि बहादुर किसी को स्वर्ण पदक प्रदान किया जाएगा, ये जानकारी दी गई है। भरतपुर विमानस्थल धावन मार्ग की मरम्मत के लिए आज से 10 दिनों तक के लिए विमानस्थल बंद रखने की जानकारी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण भरतपुर विमानस्थल कार्यालय ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका के न्यू ऑरलियंस में पुलिस ने बताया है कि फ्रेंच क्वार्टर टूरिस्ट हब में हुई गोलीबारी में 11 लोग घायल हुए हैं। अमेरिकी मीडिया ने एक अफसर के हवाले से बताया है कि इस घटना में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। अब तक किसी के मारे जाने की कोई खबर नहीं है। स्थानीय समयानुसार यह घटना सुबह 3:20 पर बर्बन और चार्टर स्ट्रीट्स में कैनल स्ट्रीट पर हुई। पुलिस ने ट्विटर पर बताया है कि एक संदिग्ध को घटनास्थल के पास हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने बाद में बताया कि व्यक्ति की संभावित संलग्नता की अभी भी जांच चल रही है और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। उत्तर कोरिया ने जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे को मूर्ख और राजनीतिक रूप से कच्चा कहा है। उत्तर कोरिया का कहना है कि जापान के प्रधानमंत्री उत्तर कोरिया के ताजा मिसाइल परीक्षण के बारे में गलत जानकारी दे रहे हैं। गुरुवार को शिंजो अबे ने कहा था कि उत्तर कोरिया का बार बार बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करना दुनिया के लिए खतरा है, लेकिन उत्तर कोरिया का कहना है कि वो सुपर लार्ज मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर का परीक्षण कर रहा था। शनिवार को उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया ने कहा कि जापान निकट भविष्य में जल्द असली बैलिस्टिक मिसाइल देख सकता है। उत्तर कोरिया फिलहाल बैलिस्टिक मिसाइलों पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। उसके परमाणु कार्यक्रम और मिसाइलों पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। उत्तर कोरिया की कोशिश है कि वो जापान के मित्र देश अमेरिका से बातचीत जारी रखे ताकि उस पर लगे प्रतिबंधों में उसे ढील मिले। अफगान सरकार ने कहा है कि तालिबान को अमेरिका के संघर्ष विराम प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो इससे अफगानिस्तान सरकार के साथ उसकी बातचीत का मार्ग माफ करें एक बार फिर सुने अफगान सरकार ने कहा है कि तालिबान को अमेरिका के संघर्ष विराम प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर वो ऐसा करता है तो इससे अफगानिस्तान सरकार के साथ उसकी बातचीत का मार्ग प्रशस्त होगा। अफगान सरकार का यह बयान गत शुक्रवार को गत गुरुवार को अफगानिस्तान में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद सामने आया है जिसमें उन्होंने क्षेत्र में शांति बहाली की वकालत की थी। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के प्रवक्ता सादिक सिद्दीकी ने कहा, हमें पूरी उम्मीद है कि तालिबान अमेरिका के संघर्ष विराम प्रस्ताव को स्वीकार करेगा। अगर वो वास्तव में संघर्ष विराम के प्रति प्रतिबद्ध है तो मेरी राय में ये उसके लिए सबसे अच्छा मौका है। तालिबान के पूर्व सदस्य मावलाना जलालुद्दीन शिनवारी ने कहा कि तालिबान तब तक संघर्ष विराम समझौते पर सहमत नहीं होगा जब तक वो अमेरिका के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करता। पहले समझौते पर हस्ताक्षर होंगे, फिर संघर्ष विराम की घोषणा की जाएगी। समझौते पर दस्तखत के जरिए तालिबान अमेरिका से विश्वास बहाली की गारंटी चाहता है। इराकी संसद ने प्रधानमंत्री आदिल अब्दुल महदी के इस्तीफे को आज मंजूरी दे दी। इसके साथ ही संविधान के मुताबिक पूरी कैबिनेट काम चलाओ सरकार की भूमिका में आ गई है। स्पीकर ने कहा है कि अब वो राष्ट्रपति बरहम सलेह से नए प्रधानमंत्री को नामित करने का अनुरोध करेंगे। हालांकि विपक्षी दलों ने अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने के संकेत दिए हैं। दरअसल देश में बढ़ती हिंसा की वारदातों के बीच शिया धार्मिक नेता अली सिस्तानी के हस्तक्षेप के बाद प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को कहा था कि वे संसद को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। मुल्क में पिछले कुछ दिनों में हिंसा की घटनाओं में वृद्धि हुई है। इनमें बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने के बाद इराक के सभी प्रांतों में प्रदर्शनकारियों के पक्ष में एकजुटता देखी जा रही है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 21.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री सेल्सियस रहा। अब मुख्य समाचार शीर्षक एक बार फिर। तेरहवीं दक्षिण एशियाई खेलकूद प्रतियोगिता औपचारिक रूप में आज हुई शुरू। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने दशरथ रंगशाला काठमांडू में भव्य समारोह के बीच किया उद्घाटन। उप निर्वाचन अंतर्गत कल हुए मतदान के अधिकांश स्थानों के मत परिणाम हुए सार्वजनिक। प्रतिनिधि सभा सदस्य कास्की क्षेत्र नंबर 2 से नेकपा की विद्या भट्टाराई हुई निर्वाचित। कास्की के मौजा बिसौना में मिट्टी के धंसने में दबने से 5 लोगों की हुई मौत और अमेरिका के न्यू ऑरलियंस में फ्रेंच क्वार्टर टूरिस्ट हब में हुई गोलीबारी में 11 लोग हुए घायल। इसके साथ हिंदी समाचार से मुझे अनुमति दीजिए। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। नमस्कार। शुभ रात्रि।